रोमन पॉल रोम में उन सभी लोगों के लिए जो ईश्वर से प्यार करते हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ईश्वर, जिनके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करते समय मैं पूरे दिल से उनकी सेवा करता हूँ, वह मेरा गवाह है कि मैं हर समय अपनी प्रार्थनाओं में आपको कितना लगातार याद करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब अंततः भगवान की इच्छा से मेरे लिए आपके पास आने का रास्ता खुल जाए। मैं आपसे मिलने की लालसा रखता हूँ ताकि मैं आपको मजबूत बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक उपहार दे सकूँ, ताकि आप और मैं एक दूसरे के विश्वास से प्रोत्साहित हो सकें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि मैंने तुम्हारे पास आने की कई बार योजना बनाई, परंतु मुझे ऐसा करने से रोका गया। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों दोनों का ऋणी हूँ। यही कारण है कि मैं तुम लोगों को, जो रोम में हैं, सुसमाचार सुनाने को बहुत उत्सुक हूँ। मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि यह विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उद्धार के लिए ईश्वर की शक्ति है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की ओर से धार्मिकता प्रकट होती है, वह धार्मिकता जो आदि से अंत तक विश्वास से होती है, जैसा लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। दुष्टता। परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की सारी अधर्मिता और दुष्टता के विरुद्ध स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, जो अपनी दुष्टता से सत्य को दबाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ जाना जा सकता है वह उनके लिए स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उन पर स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि संसार की रचना के बाद से ईश्वर के अदृश्य गुण, उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति स्पष्ट रूप से देखे गए हैं, जो कुछ बनाया गया है उससे समझा जा रहा है, ताकि मनुष्य बिना किसी बहाने के रह सकें। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, तो भी उन्होंने परमेश्वर के समान उसकी महिमा नहीं की और न उसका धन्यवाद किया, परंतु उनका विचार व्यर्थ हो गया और उनका मूर्ख मन अंधेरा हो गया। हालांकि वे बुद्धिमान होने का दावा करते थे, फिर भी वे मूर्ख बन गए और अमर ईश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों की तरह दिखने वाली छवियों के बदले में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की पापमय अभिलाषाओं के अनुसार लैंगिक अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे एक दूसरे के साथ अपने शरीरों का अनादर करें। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ से बदल दिया और सृष्टिकर्ता की बजाय सृजी हुई चीजों की पूजा और सेवा की। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें लज्जाजनक अभिलाषाओं के वश में कर दिया। यहां तक कि उनकी महिलाओं ने भी प्राकृतिक संबंधों को अप्राकृतिक संबंधों से अदला बदली किया। इसी प्रकार पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संबंध त्याग दिया और एक दूसरे के प्रति वासना से भड़क उठे। पुरुषों ने अन्य पुरुषों के साथ अशोभनीय कार्य किए और अपने विकृति के लिए उचित दंड प्राप्त किया। इसके अलावा, चूंकि उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान बनाए रखना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने उन्हें भ्रष्ट मन के वश में कर दिया कि वे वह करें जो उचित नहीं था। वे हर प्रकार की दुष्टता, दुष्टता, लालच और दुष्टता से भर गए हैं। वे ईर्ष्या, हत्या, कलह, छल और द्वेष से भरे हुए हैं। वे गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से बैर करने वाले, ढीठ, अहंकारी और घमंडी हैं। वे बुराई करने के तरीके ईजाद करते हैं। वे अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं। वे नासमझ, आस्थाहीन, हृदयहीन, निर्दयी हैं। हालांकि वे परमेश्वर के धर्मी आदेश को जानते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वे मृत्यु के पात्र हैं, वे न केवल यही काम करते रहते हैं बल्कि उन लोगों का अनुमोदन भी करते हैं जो उनका अभ्यास करते हैं। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर अपने सृजित प्राणियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य नहीं करता, क्योंकि उसने उन्हें चुनने की क्षमता के साथ बनाया है। इसलिए उसने उन्हें वह करने की अनुमति दी जो वे करना चाहते थे। नहीं उसने उन्हें शैतान के मूर्खतापूर्ण और विद्रोही कार्यों को चुनने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई की। टिप्पणी समाप्त करें। निर्णय जो किसी दूसरे पर निर्णय देते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जिस भी बिंदु पर आप दूसरे पर दोष लगाते हैं आप स्वयं को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप भी वही काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय सत्य पर आधारित है। तो जब आप एकमात्र मनुष्य उन पर निर्णय देते हैं और फिर भी वही चीजें करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप भगवान के न्याय से बच जाएंगे? या क्या आप उसकी दयालुता, सहनशीलता और धैर्य के धन का तिरस्कार करते हैं, यह नहीं जानते हुए कि भगवान की दयालुता आपको पश्चाताप की ओर ले जाती है? परंतु अपने हठ और अपके अपश्चातापी मन के कारण तुम परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जिस दिन उसका धर्मी न्याय प्रकट होगा, अपके ही विरुद्ध क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लोग भलाई करने में लगे रहकर महिमा, आदर और अमरता चाहते हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य को अस्वीकार करते और बुराई का अनुसरण करते हैं, उनके लिए क्रोध और क्रोध होगा। हर उस मनुष्य के लिए जो बुराई करता है, विपत्ति और संकट होगा, पहले यहूदी के लिए, फिर अन्य जाति के लिए। परंतु जो कोई भलाई करता है, उसके लिए महिमा, आदर और शांति हो, पहले यहूदी के लिए, फिर अन्य जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो कोई व्यवस्था को छोड़कर पाप करता है, वह व्यवस्था के बिना भी नष्ट हो जाएगा, और जो कोई व्यवस्था के अधीन पाप करता है, उसका न्याय व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले ही धर्मी ठहरेंगे। वास्तव में जब गैर यहूदी, जिनके पास कानून नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से कानून द्वारा अपेक्षित चीजें करते हैं, तो वे अपने लिए एक कानून हैं, भले ही उनके पास कानून नहीं है, क्योंकि वे दिखाते हैं कि कानून की आवश्यकताएं लिखित हैं। उनके दिल, उनका विवेक भी गवाही दे रहा है, और उनके विचार अब आरोप लगा रहे हैं, अब उनका बचाव भी कर रहे हैं। यह उस दिन होगा जब भगवान यीशु मसीह के माध्यम से पुरुषों के रहस्यों का न्याय करेंगे, जैसा कि मेरा सुसमाचार घोषित करता है। अब तुम, यदि तुम अपने आप को यहूदी कहते हो, यदि तुम कानून पर भरोसा करते हो और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में डींगे मारते हो, यदि आप उसकी इच्छा जानते हैं और जो श्रेष्ठ है उसका अनुमोदन करते हैं, क्योंकि आप कानून द्वारा निर्देशित हैं, यदि तू निश्चय कर ले कि तू अंधों का मार्गदर्शक और अंधियारों के लिए ज्योति और मूर्खों को सिखाने वाला और बालकों को सिखाने वाला है, क्योंकि तू व्यवस्था में ज्ञान और सत्य का स्वरूप है, तो तू जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, क्या तुम स्वयं को नहीं शिक्षा देते? तुम जो चोरी के विरुद्ध उपदेश देते हो, क्या तुम चोरी करते हो? तू जो कहता है कि व्यभिचार न करना चाहिए, क्या तू व्यभिचार करता है? तुम जो मूर्तियों से घृणा करते हो, क्या तुम मंदिरों को लूटते हो? तुम जो व्यवस्था की बड़ाई करते हो, क्या व्यवस्था तोड़कर परमेश्वर का अनादर करते हो? जैसा लिखा है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। धार्मिकता। यदि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तो खतना का मूल्य है, परंतु यदि तुम व्यवस्था तोड़ते हो तो मानो तुम्हारा खतना हुआ ही न हो। यदि जिनका खतना नहीं हुआ वे कानून की शर्तों का पालन करते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं माना जाएगा मानो उनका खतना हुआ हो? जिसका शारीरिक खतना नहीं हुआ है और फिर भी वह व्यवस्था का पालन करता है, वह तुम्हें दोषी ठहराएगा, जो लिखित संहिता और खतना होने पर भी व्यवस्था तोड़ने वाला है। कोई व्यक्ति यहूदी नहीं है यदि वह केवल बाहरी रूप से यहूदी है, नहीं खतना केवल बाहरी और शारीरिक है। नहीं, एक आदमी यहूदी है अगर वह अंदर से यहूदी है, और खतना हृदय का खतना है, आत्मा द्वारा, लिखित संहिता द्वारा नहीं। ऐसे मनुष्य की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो फिर यहूदी होने का क्या लाभ है या खतने का क्या महत्व है? हर तरह से बहुत कुछ। सबसे पहले उन्हें परमेश्वर के वचन ही सौंपे गए हैं। अब हम जानते हैं कि कानून जो कुछ भी कहता है वह उनसे कहता है जो कानून के अधीन हैं। इस कारण व्यवस्था के मानने से कोई उसके सामने धर्मी न ठहरेगा, बल्कि कानून के माध्यम से हम पाप के प्रति सचेत हो जाते हैं। परंतु अब परमेश्वर की ओर से एक धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। परमेश्वर की ओर से यह धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उन सभी के लिए आती है जो विश्वास करते हैं कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और मसीह यीशु द्वारा प्राप्त मुक्ति के माध्यम से उनकी कृपा से स्वतंत्र रूप से उचित ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने उसके रक्त में विश्वास के माध्यम से उसे प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपने न्याय को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अपनी सहनशीलता के कारण उसने पहले किए गए पापों को दंडित किए बिना छोड़ दिया था। उसने ऐसा वर्तमान समय में अपने न्याय को प्रदर्शित करने के लिए किया, ताकि वह न्यायी हो और जो यीशु में विश्वास रखते हैं उन्हें न्यायोचित ठहराए। तो फिर घमंड कहाँ है? इसे बाहर रखा गया है। किस सिद्धांत पर? कानून का पालन करने के बारे में नहीं, लेकिन उस विश्वास पर, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति कानून का पालन करने के अलावा विश्वास से भी धर्मी ठहराया जाता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ही ईश्वर है? क्या वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर नहीं है? हाँ, अन्य जातियों का भी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जो खतना वालों को विश्वास से और खतनारहितों को भी उसी विश्वास से धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम इस विश्वास से कानून को रद्द कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम कानून का समर्थन करते हैं। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और यह उसका विश्वास जो उसके कार्यों से प्रमाणित है उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब जब कोई आदमी काम करता है तो उसकी मजदूरी उसे उपहार के रूप में नहीं बल्कि एक दायित्व के रूप में जमा की जाती है। काम नहीं करता परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखता है जो दुष्टों को धर्मी ठहराता है, उसके विश्वास को धार्मिकता माना जाता है। दाऊद वही बात कहता है जब वह उस मनुष्य के धन्य होने की बात करता है जिसे परमेश्वर कामों के अलावा धार्मिकता का श्रेय देता है। धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप ढके हुए हैं। वह मनुष्य धन्य है जिसका पाप प्रभु कभी उसके विरुद्ध नहीं मानेगा। संकलक की टिप्पणी, इब्राहिम के विश्वास को धार्मिकता के रूप में श्रेय दिया गया। यह परमेश्वर द्वारा मूसा के साथ वाचा बांधने से पहले की बात है। उसे खतने का चिन्ह अर्थात उस धार्मिकता की मुहर प्राप्त हुई जो उसने खतनारहित ही रहते हुए विश्वास के द्वारा प्राप्त की थी। तो फिर वह उन सभी का पिता है जो यहूदियों और अन्य जातियों पर विश्वास करते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। वादा। इब्राहिम और उसकी संतान को प्रतिज्ञा मिली कि वह जगत का उत्तराधिकारी होगा, परंतु उस धार्मिकता के द्वारा जो विश्वास से आती है। वह हम सबके पिता हैं। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। परमेश्वर की दृष्टि में वह हमारा पिता है जिस पर उसने विश्वास किया। वह परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाता है और जो वस्तुएं हैं ही नहीं उन्हें भी जीवित कर देता है। सारी आशा के विरुद्ध इब्राहिम ने आशा में विश्वास किया और इस प्रकार कई राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अपने विश्वास को कमजोर किए बिना उसने इस तथ्य का सामना किया कि उसका शरीर मृत के समान था, क्योंकि वह लगभग 100 वर्ष का था और सारा का गर्भ भी मृत था। फिर भी वह परमेश्वर के वादे के संबंध में अविश्वास से नहीं डगमगाया, बल्कि अपने विश्वास में मजबूत हुआ और परमेश्वर की महिमा की और पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि परमेश्वर के पास वह करने की शक्ति है जो उसने वादा किया था। यही कारण है कि यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसका श्रेय उसे दिया गया शब्द अकेले उसके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी लिखे गए थे, जिन्हें ईश्वर धार्मिकता का श्रेय देगा, हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। उसे हमारे पापों के लिए मौत के घाट उतार दिया गया और हमारे औचित्य के लिए उसे पुनर्जीवित किया गया। इसलिए चूंकि हम विश्वास के माध्यम से न्यायसंगत हो गए हैं, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से भगवान के साथ शांति है, जिसके माध्यम से हमने विश्वास के माध्यम से इस अनुग्रह तक पहुंच प्राप्त की है जिसमें हम अब खड़े हैं। हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कष्टों में आनंद भी मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से दृढ़ता उत्पन्न होती है, दृढ़ता चरित्र और चरित्र आशा। आशा हमें निराश नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला है, जो उसने हमें दिया है। आप देखिए, बिल्कुल सही समय पर, जब हम अभी भी शक्तिहीन थे, मसीह अधर्मियों के लिए मर गया। बहुत कम ही होता है कि किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरेगा, हालांकि एक अच्छे व्यक्ति के लिए कोई संभवतः मरने का साहस कर सकता है। परंतु परमेश्वर इस प्रकार हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। चूंकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा उससे मेल हो गया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा हमारा उद्धार क्यों न होगा? न केवल ऐसा है, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंद भी मनाते हैं, जिसके द्वारा अब हमारा मिलमिलाप हुआ है। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में आई, क्योंकि सब ने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था दिए जाने से पहले पाप जगत में था। लेकिन कानून न होने पर पाप नहीं गिना जाता। फिर भी मृत्यु ने आदम के समय से लेकर मूसा के समय तक शासन किया। मृत्यु कानून से पहले शासन करती थी, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जिन्होंने आदेश तोड़कर पाप नहीं किया था, जैसा कि आदम ने किया था, जो आने वाले का एक नमूना था। लेकिन उपहार अतिचार जैसा नहीं है, क्योंकि यदि एक ही मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मर गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह और वह उपहार जो एक ही मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से सभी आज्ञापालकों को मुक्ति का उपहार मिला, बहुतों तक क्यों कर पहुंचा? फिर भगवान का उपहार एक व्यक्ति के पाप के परिणाम की तरह नहीं है, निर्णय एक पाप के बाद आया और निंदा लाया, लेकिन उपहार कई अपराधों के बाद आया और औचित्य लाया। क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक मनुष्य के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग परमेश्वर का प्रचुर अनुग्रह और धार्मिकता का उपहार पाते हैं, वे एक ही मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य क्यों न करेंगे? परिणामस्वरूप जिस प्रकार एक अपराध का परिणाम सभी मनुष्यों के लिए निंदा था, उसी प्रकार धार्मिकता के एक कार्य का परिणाम भी औचित्य था, जो सभी मनुष्यों के लिए जीवन अनंत जीवन लाता है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। संकलक की टिप्पणी, प्रेम के कारण ईश्वर का मुक्ति का उपहार, जिसे अक्सर अनुग्रह कहा जाता है, नासरत के यीशु के माध्यम से आया। मनुष्य को यह निर्णय लेना होगा कि वह उसके उपहार को आज्ञाकारिता से स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। टिप्पणी समाप्त करें। आस्था, धार्मिकता और अनुबंध। ईश्वर ने इब्राहीम से वफादार और धर्मी होने का वादा किया, तुम्हारे माध्यम से सभी राष्ट्र धन्य होंगे, तुम्हारे वंशज मसीह। सैकड़ों वर्ष बाद उसने मूसा के माध्यम से इसराइलियों के साथ एक वाचा बांधी, जिसमें अन्य जातियों को शामिल नहीं किया गया। इसराइलियों के साथ की गई वाचा ने उन्हें पाप के बारे में जागरूक किया, लेकिन क्षमा के बारे में नहीं। केवल एक मुक्तिदाता के वादे के बारे में बताया जो ऐसा करेगा। जानवरों की उनकी वार्षिक बलि पिछले पापों की याद दिलाती थी और भविष्य में क्षमा का वादा करती थी। मुक्तिदाता का वादा तब पूरा हुआ जब परमेश्वर ने केवल यहूदियों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के साथ एक बेहतर वाचा स्थापित करने के लिए यीशु को भेजा। यह नई स्थायी वाचा परमेश्वर के पुत्र के प्रायश्चित बलिदान, कब्र से उसके पुनरुत्थान, मृत्यु पर विजय, मनुष्य पर शैतान की पकड़ द्वारा लागू की गई थी। इस नई और बेहतर वाचा ने ईश्वर को क्षमा, मुक्ति और मेलमिलाप की पेशकश की। जिन लोगों ने उसके उद्धार के उपहार को स्वीकार करना चुना, उन्हें मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा के माध्यम से दफनाया जाएगा, ताकि जैसे मसीह को पिता की महिमा के माध्यम से मृतकों में से उठाया गया था, वे भी एक नया जीवन जीने के लिए उसके साथ एकजुट हो जाएंगे। यदि हम उसकी मृत्यु में इस तरह उसके साथ एकजुट रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ एकजुट रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि पाप का शरीर मिट जाए, कि हम फिर पाप के दास न रहें, क्योंकि जो कोई मर गया वह पाप से छुटकारा पा गया है। संकलक की टिप्पणी, क्षमा, मुक्ति, मेलमिलाप का यह उपहार जो किसी का उद्धार है, या तो स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। जब कोई उपहार स्वीकार करता है तो वे अपने पापी जीवन के लिए मर जाते हैं, मसीह की मृत्यु और रक्त में दफन हो जाते हैं, जो कि बपतिस्मा या विसर्जन है। तब भगवान उनके मृत पापी जीवन को पुनर्जीवित करते हैं, इसे चिस्ट के शरीर उनके चर्च में डालते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। रोमन ईसाइयों को अनुबंध समझाने के लिए पॉल ने एक उदाहरण के रूप में विवाह अनुबंध दिया। क्या तुम नहीं जानते भाइयों, क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मूसा के कानून को जानते हैं, कि कानून का अधिकार मनुष्य पर केवल तब तक है जब तक वह जीवित है। उदाहरण के लिए, कानून के अनुसार एक विवाहित महिला तब तक अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित है, लेकिन यदि उसका पति मर जाता है तो वह विवाह के कानून से मुक्त हो जाती है। तो फिर यदि वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है, परंतु यदि उसका पति मर जाता है तो वह उस कानून से मुक्त हो जाती है और व्यभिचारिणी नहीं होती, भले ही वह दूसरे पुरुष से विवाह कर ले। संकलक की टिप्पणी, चूंकि व्यभिचार एक अनुबंध को तोड़ना है और चूंकि मृत्यु अनुबंधों को भंग कर देती है, एक पत्नी जिसका पति मर गया है वह अब शादीशुदा नहीं है, और जब वह दोबारा शादी करती है तो वह व्यभिचारिणी नहीं हो सकती, क्योंकि तोड़ने के लिए कोई विवाह अनुबंध नहीं है। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद पापपूर्ण जीवन जीने के लिए मसीह के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करता है, परंतु जब वह परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना करता है तो वह व्यभिचारी बन जाता है, क्योंकि उसने मसीह के साथ अपनी वाचा तोड़ दी है। टिप्पणी समाप्त करें। हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए कि दूसरे के हो जाओ, अर्थात जो मरे हुओं में से जी उठा, कि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। क्योंकि जब हम पापी स्वभाव के वश में थे तो व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न पापमय अभिलाषाएं हमारे शरीरों में काम करने लगीं और हम पर मृत्यु का फल उत्पन्न हुआ। लेकिन अब जो पहले हमें बांधता था उसके प्रति मरकर हम कानून से मुक्त हो गए हैं, ताकि हम आत्मा के नए तरीके से सेवा करें, न कि लिखित कोड के पुराने तरीके से। संकलक की टिप्पणी, प्रायश्चित बलिदान, मसीह की मृत्यु ने पुरानी वाचा को पूरा किया। इसलिए जब यहूदी नई वाचा में मसीह के उद्धार के उपहार को स्वीकार करते थे तो वे व्यभिचारी नहीं बन सकते थे, क्योंकि तोड़ने के लिए कोई वाचा नहीं थी। टिप्पणी समाप्त करें। मैं इस नियम को काम में पाता हूं, जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुराई मेरे साथ होती है, क्योंकि मैं अपने अंतःकरण में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, लेकिन मैं अपने शरीर के अंगों में एक और कानून को काम करते हुए देखता हूँ जो मेरे मन के कानून के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और मुझे मेरे अंगों के भीतर काम कर रहे पाप के कानून का कैदी बना रहा है। मैं कैसा अभागा आदमी हूँ। इस मृत्यु के शरीर से मुझे कौन बचाएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो फिर मैं स्वयं अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था का दास हूँ, परंतु पापी स्वभाव से पाप की व्यवस्था का दास हूँ। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में हैं, क्योंकि मसीह यीशु के माध्यम से जीवन की आत्मा के कानून ने मुझे पाप और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्योंकि पापी स्वभाव के कारण व्यवस्था कमजोर होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थी, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापी मनुष्य के रूप में पापबलि के रूप में भेजकर किया। उसने पापी मनुष्य में पाप की निंदा की ताकि कानून की धार्मिक आवश्यकताएं हम में पूरी तरह से पूरी हो सकें, जो पापी स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीते हैं। जो लोग पापी स्वभाव के अनुसार जीते हैं उनका मन उस चीज पर लगा रहता है जो स्वभाव चाहता है, परंतु जो आत्मा के अनुसार जीते हैं उनका मन उस पर लगा रहता है जो आत्मा चाहता है। पापी मनुष्य का मन मृत्यु है, परंतु आत्मा के वश में रहने वाला मन जीवन और शांति है। पापी मन परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है। यह परमेश्वर के कानून के प्रति समर्पण नहीं करता है, नहीं ऐसा कर सकता है। जो लोग पापी स्वभाव के वश में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालांकि आप पापी स्वभाव से नहीं बल्कि आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं यदि परमेश्वर की आत्मा आप में रहती है। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह मसीह का नहीं है। परंतु यदि मसीह तुम में है तो तुम्हारा शरीर पाप के कारण मर गया है, तो भी तुम्हारी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवन देगा। संकलक की टिप्पणी, आप आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं जब आप अपने आंतरिक अस्तित्व हृदय से लगातार ईश्वर की इच्छा की तलाश करते हैं और उसे पूरा करते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। आत्मा, हम नहीं जानते कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयंकरा आंतरिक मनुष्य की दुहक, खुशी, आशा या निराशा की गहरी भावनाएं के साथ हमारे लिए हस्तक्षेप करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो हमारे हृदयों को जांचता है वह आत्मा के मन को जानता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि सभी चीजों में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया उन्हें उसने अपने पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए भी पहले से नियुक्त किया, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा हो। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें उसने बुलाया उनको उसने धर्मी भी ठहराया, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मुसीबत या कष्ट या उत्पीड़न या अकाल या नंगापन या खतरा या तलवार? नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई, न सारी सृष्टि में कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। संकलक की टिप्पणी, समस्त मानव जाति को चुनने की क्षमता के साथ बनाया गया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के हृदय को पहले से जान लिया। अर्थात वह जानता था कि वे जीवन में सामने आने वाली परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए गो ने शुरुआत में मनुष्य के लिए यीशु के उपहार के माध्यम से उसके पास लौटने का एक तरीका तय किया, लेकिन केवल कुछ ही लोगों ने उसके आह्वान को स्वीकार किया है या करेंगे। टिप्पणी समाप्त करें। अब रिबका के बच्चों का पिता इसहाक एक ही था, फिर भी जुड़वा बच्चों के जन्म से पहले ताकि चुनाव में भगवान का उद्देश्य कायम रहे, काम से नहीं बल्कि बुलाने वाले के द्वारा उसे बताया गया था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। याकूब मैंने प्यार किया, लेकिन एसाव मैंने नफरत की, कम प्यार, उपेक्षा, घृणा, संभवतः दृष्टिकोण के कारण। तो फिर हम क्या कहें? क्या भगवान अन्यायी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मुझे मिलेगा जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस पर मैं दया करूंगा उस पर दया करूंगा उनके हृदय के ज्ञान के आधार पर। इसके अलावा पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य से खड़ा किया है कि मैं प्रदर्शित कर सकूं तुम में मेरी शक्ति है, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर किया जाए। अब भी हम पर दोष लगाते हैं। कौन उसकी इच्छा का विरोध करता है? परंतु हे मनुष्य, तू कौन होता है जो परमेश्वर से बातें करता है? मिट्टी के एक ही ढेले, मानव जाति से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे उद्देश्यों के लिए और कुछ सामान्य उपयोग के लिए बनाने का अधिकार है। मिट्टी में कोई दोष निर्मित होने वाले उत्पाद को बदल सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि अन्य जातियों ने, जो धर्म की खोज में नहीं थे, उसे प्राप्त किया है, वह धार्मिकता जो विश्वास से होती है, परंतु इसराइल जो धर्म की व्यवस्था पर चलता था, उस तक नहीं पहुंच सका। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं, परंतु मानव कर्मों से उसका अनुसरण किया। वे ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाकर गिर पड़े। देखो, मैं सियोन में एक पत्थर मसीह रखता हूँ जो मनुष्यों को ठोकर खिलाता है, और एक चट्टान जो उन्हें गिरा देती है, और जो कोई उस पर भरोसा करेगा वह कभी लज्जित न होगा। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर द्वारा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रस्तुत अवसरों को लगातार अस्वीकार करने से हृदय कठोर हो जाता है। इस हृदय की कठोरता को फिरौन के माध्यम से उन 10 विकल्पों द्वारा प्रदर्शित किया गया जो ईश्वर ने उसे दिए थे, जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया। टिप्पणी समाप्त करें। मैं उनके विषय में गवाही दे सकता हूं कि वे परमेश्वर के प्रति उत्साही हैं, परंतु उनका उत्साह ज्ञान पर आधारित नहीं है, चूंकि वे परमेश्वर से आने वाली धार्मिकता को नहीं जानते थे और अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पण नहीं किया। मसीह व्यवस्था का अंत है ताकि विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिकता हो। शब्द तुम्हारे निकट है, यह तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हृदय में है, अर्थात विश्वास का वचन जो हम घोषित कर रहे हैं। यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करते हो यीशु प्रभु हैं, और अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तुम हो जाओगे बचाया, क्योंकि तुम अपने हृदय से विश्वास करते हो और धर्मी ठहरते हो, और अपने मुंह से अंगीकार करते हो और उद्धार पाते हो। जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर भरोसा करता है उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास, स्वीकारोक्ति और विश्वास पर काम किया है। तो फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है उसे वे कैसे बुला सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? वे उस पर विश्वास करते हैं जिसकी उन्होंने नहीं सुनी, और बिना किसी को उपदेश दिए वे कैसे सुन सकते हैं? जब तक उन्हें भेजा न जाए वे प्रचार कैसे कर सकते हैं? संकलक की टिप्पणी, ईश्वर की पुकार मसीह की स्वीकृति के माध्यम से क्षमा है। कोई मानसिक रूप से किसी बात को स्वीकार कर सकता है, यानी उन्हें ज्ञान तो है लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं। टिप्पणी समाप्त करें। ईश्वर की दया। जैसे कि तुम जो एक समय में परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी थे, अब उनके उपहार, उनकी बुलाहट और उनकी दया, उनकी मुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त कर चुके हैं। ओह परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के धन की गहराई। उसके निर्णय कितने अप्राप्य हैं और उसके रास्ते कितने अप्राप्य हैं। प्रभु के मन को किसने जाना है अथवा उनका परामर्शदाता कौन रहा है। किसने कभी परमेश्वर को कुछ दिया है कि परमेश्वर उसका बदला चुकाए। क्योंकि उसी से और उसी के द्वारा और उसी में सब कुछ है। उसकी महिमा हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि परमेश्वर की दया को ध्यान में रखते हुए अपने शरीरों को तुम अपना जीवन कैसे जीते हो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान के रूप में अर्पित करो। यही तुम्हारी आराधना का आध्यात्मिक कार्य है। अब इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित हो जाओ। मन को पूजा के आध्यात्मिक कार्य का एक हिस्सा होना चाहिए। तब आप परखने और अनुमोदन करने में सक्षम होंगे कि ईश्वर की इच्छा क्या है, उसकी अच्छी, सुखदायक और सिद्ध इच्छा। नौकर, अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे अधिक मत सोचो, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें जो विश्वास दिया है उसके अनुसार अपने बारे में संयमित निर्णय के साथ सोचो। जिस प्रकार हम में से प्रत्येक के पास कई सदस्यों वाला एक शरीर है और इन सभी सदस्यों का कार्य समान नहीं है, तो मसीह में हम जो अनेक हैं एक शरीर बनाते हैं और प्रत्येक सदस्य अन्य सभी का है। हमें दी गई कृपा के अनुसार हमारे अलग अलग कार्य हैं। अगर भविष्यवाणी करते समय वह इसे अपने विश्वास के अनुपात में उपयोग करे, सेवा कर रहा है उसे सेवा करने दो, पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने दो, प्रोत्साहित करना उसे प्रोत्साहित करने दो, दूसरों की जरूरतों में योगदान करते हुए उसे उदारता पूर्वक देने दें, नेतृत्व उसे लगन से शासन करने दें, दया दिखाते हुए उसे प्रसन्नता से ऐसा करने दो। प्यार सच्चा होना चाहिए। जो बुरा है उससे घृणा करो, जो अच्छा है उससे चिपके रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। अपने आप से ज्यादा एक दूसरे का सम्मान करें। उत्साह में कभी कमी न रखें, बल्कि प्रभु की सेवा करते हुए अपना आध्यात्मिक उत्साह बनाए रखें। आशा में आनंदित रहो, दुख में धैर्यवान रहो, प्रार्थना में विश्वासयोग्य रहो। परमेश्वर के उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें जरूरत है। जो तुम पर जुल्म करते हैं उन्हें आशीष दो, आशीर्वाद दो, शाप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाओ, शोक मनाने वालों के साथ शोक मनाओ। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। अहंकार न करें, बल्कि निम्न पद वाले लोगों की संगति करने को तैयार रहें। अहंकार मत करो। किसी से बुराई का बदला बुराई न करो। जो सबकी दृष्टि में ठीक है वही करने में सावधान रहो। यदि संभव हो तो जहां तक यह आप पर निर्भर है सभी के साथ शांति से रहें। हे मेरे मित्रों, बदला न लो परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह छोड़ो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा, प्रभु कहते हैं। इसके विपरीत यदि तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो उसे खिलाओ, यदि वह प्यासा हो तो उसे कुछ पिलाओ। ऐसा करने पर तुम उसके सिर पर जलते हुए कोयले ढेर कर दोगे। बुराई से मत हारो परंतु भलाई से बुराई पर विजय पाओ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शासक अधिकारियों के अधीन समर्पित करना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने स्थापित किया है उसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। जो प्राधिकार मौजूद है वो ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। परिणामस्वरूप जो सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करता है वह परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई चीज के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, और जो ऐसा करते हैं वे स्वयं अपने ऊपर न्याय लाएंगे। क्योंकि शासक अच्छे काम करने वालों को नहीं बल्कि गलत काम करने वालों को नहीं डराते। क्या आप सत्ता में बैठे व्यक्ति के भय से मुक्त होना चाहते हैं? फिर जो उचित है वही करो और वह तुम्हारी सराहना करेगा, क्योंकि वह तुम्हारा भला करने के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तुम कुटिल काम करो तो डरो, क्योंकि वह व्यर्थ तलवार नहीं उठाता। वह परमेश्वर का सेवक है, पापी को दंड दिलाने वाला क्रोध का दूत है। इसलिए न केवल संभावित सजा के कारण बल्कि विवेक के कारण भी अधिकारियों के सामने समर्पण करना आवश्यक है। इसलिए भी तुम कर देते हो, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं, जो शासन करने में अपना पूरा समय देते हैं। हर किसी को वह दो जो तुम पर देना है, यदि तुम पर कर बकाया है तो कर चुकाओ, यदि राजस्व तो राजस्व, सम्मान है तो सम्मान है, सम्मान है तो सम्मान। एक दूसरे से प्रेम रखने का कर्ज छोड़कर कोई भी कर्ज बकाया न रहे, क्योंकि जो अपने साथी से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। आज्ञाएं, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो और जो भी अन्य आज्ञाएं हो सकती हैं, उन्हें इस एक नियम में संक्षेपित किया गया है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, प्रेम अपने पड़ोसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए प्रेम कानून की पूर्ति है। तुम्हारे लिए नींद से जागने का समय आ गया है, क्योंकि जब हमने पहले विश्वास किया था तब से अब हमारा उद्धार निकट है। रात लगभग खत्म हो चुकी है, दिन लगभग यहाँ है। इसलिए आइए हम अंधकार के कामों को दूर रखें और प्रकाश के कवच को धारण करें। आइए हम दिन के समान शालीनता से व्यवहार करें, न कि तांडव और नशे में, न व्यभिचार और व्यभिचार में, न कलह और ईर्ष्या में, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और यह मत सोचो कि पापी स्वभाव की अभिलाषाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। जिसका विश्वास कमजोर है उसे विवादित मामलों पर निर्णय दिए बिना स्वीकार करें। एक आदमी का विश्वास उसे सब कुछ खाने की इजाज़त देता है, लेकिन दूसरा आदमी जिसका विश्वास कमजोर है केवल सब्जियां खाता है। जो मनुष्य सब कुछ खाता है उसे उसको तुच्छ न समझना चाहिए जो नहीं खाता, और जो मनुष्य सब कुछ नहीं खाता उसे उस मनुष्य को दोषी नहीं ठहराना चाहिए जो खाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया है। आप कौन होते हैं किसी दूसरे के नौकर का फैसला करने वाले? अपने स्वामी के लिए वह खड़ा होता है या गिर जाता है? और वह खड़ा रहेगा, क्योंकि यहोवा उसे खड़ा करने में समर्थ है। एक मनुष्य एक दिन को दूसरे से अधिक पवित्र समझता है, दूसरा आदमी हर दिन को एक जैसा मानता है। हर एक को अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो एक दिन को विशेष मानता है वह प्रभु के लिए ऐसा करता है। जो कोई मांस खाता है वह यहोवा के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो परहेज रखता है वह यहोवा के लिए ऐसा करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। संकलक की टिप्पणी, भगवान के सेवकों को काम करना है, वफादार होना है, विनम्र होना है, दूसरों का सम्मान करना है और दूसरों का न्याय नहीं करना है। टिप्पणी समाप्त करें। हम में से कोई भी अकेले अपने लिए नहीं जीता है और हम में से कोई भी अकेले अपने लिए नहीं मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरेंगे तो प्रभु के लिए मरेंगे। इसलिए चाहे हम जिएं या मरें, हम प्रभु के हैं। इसी कारण से मसीह मर गया और जीवन में लौट आया, ताकि वह मृतकों और जीवितों दोनों का प्रभु बन सके। तो फिर आप अपने भाई पर दोष क्यों लगाते हैं? या तू अपने भाई को तुच्छ दृष्टि से क्यों देखता है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। निर्णय। यहोवा कहता है, मेरे जीवन की शपथ, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जीभ ईश्वर को स्वीकार करेगी। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को अपना हिसाब देगा। इसलिए आइए हम एक दूसरे पर निर्णय देना बंद करें। इसके बजाय यह ठान लो कि मैं अपने भाई के रास्ते में कोई रुकावट या बाधा नहीं डालूंगा। एक व्यक्ति के रूप में जो प्रभु यीशु में है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कोई भी भोजन अपने आप में अशुद्ध नहीं है। परंतु यदि कोई किसी वस्तु को अशुद्ध मानता है तो वह उसके लिए अशुद्ध है। यदि आपका भाई आपके खाने के कारण परेशान है, तो आप अब प्रेम का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अपने खाने से अपने भाई को नष्ट न करना जिसके लिए मसीह मरा। जिसे आप अच्छा समझते हैं, उसे बुरा न कहने दें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है, क्योंकि जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है और मनुष्यों में स्वीकृत होता है। इसलिए आइए हम वह हर संभव प्रयास करें जिससे शांति और आपसी उन्नति हो। भोजन के लिए परमेश्वर के कार्य को नष्ट मत करो। सभी भोजन शुद्ध हैं, परंतु मनुष्य के लिए ऐसी कोई भी वस्तु खाना गलत है जिससे किसी और को ठोकर लगती है। बेहतर होगा कि तुम मांस मत खाओ, शराब मत पियो या ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे भाई को पतन हो। इन चीजों के बारे में आप जो भी विश्वास करते हैं, उसे अपने और ईश्वर के बीच रखें। धन्य है वह मनुष्य जो जो कुछ स्वीकार करता है, उसके द्वारा स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। परंतु जो मनुष्य संदेह करता है, यदि वह खाता है, तो दोषी ठहरता है, क्योंकि उसका खाना विश्वास के कारण नहीं होता, और जो कुछ विश्वास से नहीं आता वह पाप है। हम जो ताकतवर हैं, हमें कमजोरों की असफलताओं को सहन करना चाहिए, न कि खुद को खुश करना चाहिए। हम में से प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है कि जो तेरा अपमान करते हैं, उनका अपमान मुझ पर आ पड़ा। क्योंकि जो कुछ अतीत में लिखा गया था, वह हमें सिखाने के लिए लिखा गया था, कि धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हम आशा पा सकें। परमेश्वर जो धीरज और प्रोत्साहन देता है, तुम्हें मसीह यीशु का अनुसरण करते हुए आपस में एकता की भावना दे, ताकि तुम एक मन और मुंह से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की महिमा कर सको। जैसे मसीह ने तुम्हें स्वीकार किया, वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करो, ताकि परमेश्वर की स्तुति हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मसीह परमेश्वर की सच्चाई के निमित्त यहूदियों का दास बन गया, कि कुलपतियों से की गई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करे, कि अन्य जातियां परमेश्वर की दया के कारण उसकी बड़ाई करें। संकलक की टिप्पणी व्यक्तिगत राय और व्याख्याओं को संगति की परीक्षा के रूप में दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। रोमनों के मुख्य बिंदु। ईश्वर के अदृश्य गुण प्रेम, शांति, दया, सत्य, दयालु, न्यायी, पवित्र हैं और उनकी शाश्वत शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जाती है। उसके क्रोध के दिन में परमेश्वर का धर्मी न्याय प्रकट होगा, जिस समय वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। धार्मिकता ईश्वर की ओर से यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उन सभी के लिए आती है जो विश्वास करते हैं कि सभी ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से रहित हैं। इसे अक्सर आरोपित धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। वे मसीह यीशु के प्रायश्चित बलिदान, उनके रक्त में दफनाने और निरंतर आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त मुक्ति के माध्यम से उनकी कृपा से स्वतंत्र रूप से उचित ठहराए जाते हैं। जो लोग पापी स्वभाव के अनुसार जीते हैं, उनका मन उस पर लगा रहता है जो स्वभाव चाहता है, परंतु जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनका मन उस पर लगा रहता है जो आत्मा चाहता है।